पांचवें संस्करण की भूमिका। इतनी जल्दी फिर ये संस्करण, प्रतिक्रियाओं की भरमार और विचारों की उथल पुथल। विराट वैचारिक फलक पर इस रचना के इतने विस्तार ने इस मिथ को भी तोड़ा है कि हिंदी में पाठक नहीं है, हिंदी में गंभीर पाठक नहीं है। अगर नहीं है तो इस उपन्यास को कौन खरीद रहा है और पढ़ रहा है। प्रकाशन के समय फरवरी 2000 से जुलाई 2001 से अब तक इन 18 महीनों में मैं प्रतिक्रियाओं से आप प्लावित रहा हूं, और ये सारी प्रतिक्रियाएं या तो साधारण पाठकों की हैं या उन पाठकों की जो हिंदी के वैचारिक और रचना परिदृश्य से एक साजिश के तहत अदृश्य रहते हैं या रखे जाते हैं। अब मैं ये कहने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि इस रचना ने हिंदी आलोचना के शिविरबद्ध संस्थानों की प्राचीरों के पार जाकर पाठक से वो रिश्ता कायम किया है जो इन व्यक्ति संस्थानों ने खंडित कर दिया था। इसने साहित्य के पुरोहितवाद को खारिज कर दिया है। बहस के कई मुद्दे भी उठे हैं। संतोष की बात यह है कि ये मुद्दे पाठकों ने उठाए हैं या रचनाकारों ने पाठकों की तरह उठाए हैं। एक खास मुद्दा इसकी प्रयोगशीलता को लेकर उठा है। अनेक पाठक मित्रों ने देश के कोने कोने से लिखते हुए इसकी प्रयोगशीलता की पहचान और सराहना की है। अग्रज लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने जब ये लिखा कि इसने उपन्यास के बने बनाए ढांचे को तोड़ दिया है और लेखकी अभिव्यक्ति के लिए सब कुछ संभव बना देने का दुर्लभ द्वार खोलकर एक नया रास्ता दिखाया है, ये एक नया प्रयोग है, तब मैं सचमुच आश्वस्त हुआ कि यदि इसकी प्रयोगशीलता को इस रूप में लिया जा रहा है तो ये मात्र प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं बल्कि इसका प्रयोजन भी है। फिर स्वयं प्रकाश जैसे गंभीर और सृजनरत समकालीन का पत्र मिला। उन्होंने लिखा, कहना चाहिए कि ये नाटक की ब्रेक्टियन पद्धति का उपन्यास में पहली बार निवेश करता है और बेशक खतरे उठाते हुए इसकी कीमत चुकाते हुए भी अपने मकसद में कामयाब रहता है। इसलिए इसे क्या कहें, अनुपन्यास या प्रत्युपन्यास? लेकिन ऐसा कहने से कलावादी रूपवादी प्रतिक्रियावाद की बू आती है। लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि शिल्प के उनसे बड़े और ज्यादा जोखिम वाले प्रयोग प्रगतिशील लेखक कर सकते हैं। परिभाषा वाली बात को फिलहाल स्थगित रखते हुए प्रयोग वाले मुद्दे पर कालीकट केरल से लिखित कोविद अनंत मूर्ति अनंगम की चंद सत्रें देना चाहता हूं। इसमें अतिरेक और अतिरंजना है, पर वो स्वतः स्फूर्त भी है। वे कहते हैं कि इस उपन्यास ने प्रेमचंद से बहुत आगे जाकर जिस वैश्विक चिंता से हमें जोड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोग के धरातल पर तो इसने कमाल किया है। प्रेमचंद प्रयोगवादी नहीं थे, लेकिन प्रयोगवादी वात्स्यायन को उन्होंने सदियों पीछे छोड़ दिया है। इनकी भाषा ने जैनेन्द्र की निजी भाषा से हिंदी को मुक्त करके उस भाषा और मुहावरे को पकड़ा है जो भविष्य की भाषा है। ये उद्धरण मैं प्रशस्त गायन के लिए नहीं, प्रयोग के मुद्दे को सुलझाने के लिए दे रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी प्रयोग इस रचना में हुआ या हो गया है वो मेरे कारण नहीं बल्कि कथ्य के कारण हुआ है। लेखक प्रयोगवादी होने का दम्भ पाल सकता है, पर प्रयोग की सारी संभावनाएं केवल कथ्य में निहित होती हैं। अब परिभाषा का सवाल, ये उपन्यास है या कुछ और? तो मैं यही कह सकता हूं कि इसे मैंने उपन्यास की तरह शुरू किया था और उपन्यास मानकर ही पूरा किया है। इसे उपन्यास की तरह ही पढ़ा गया है। मेरी समझ से ये परिभाषा का कोई संकट खड़ा नहीं करता। यदि थोड़ा सा संकट खड़ा भी होता है तो इसलिए कि इसमें राष्ट्रीय सभ्यतागत समयगत समस्याओं का विस्तार हुआ है। वैश्विक चिंताओं के बीच इसमें हर देश में मौजूद अपने देश को पहचानने की कोशिश की गई है। भाषा को लेकर जो सवाल उठे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए अहिंदी भाषाओं के मात्र दो पाठकों के विचार ही काफी होंगे। मराठी भाषी डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे ने कहा कि बहुत अच्छा मराठी अनुवाद मौजूद होने के बाद भी वे इसे हिंदी में पढ़ने के लिए उत्सुक हुए और उन्हें ये लगा कि ये यानी इसकी हिंदी उन सबकी हिंदी है जो हिंदी वालों की वैयक्तिक हिंदी नहीं बल्कि भविष्यमुखी राष्ट्रीय हिंदी होगी।
पृष्ठ एक।
ओडिशा में गौरी भुवन दास ने बताया कि ये उपन्यास ओडिया में संभवतः अगस्त में आ रहा है, पर इसके हिंदी संस्करण के आधार पर कुछ समीक्षाएं ओडिया में पहले ही छप रही हैं। उन्हें पढ़कर मैंने बड़ी कठिनाई से हिंदी संस्करण प्राप्त किया। इसकी हिंदी हमें सब कुछ सहजता से समझा देती है। ये साम्राज्यवादी हिंदी नहीं, ये भारतीय हिंदी है, ये भारत की जनवादी हिंदी है। कुछ जगहों से इसके शीर्षक कितने पाकिस्तान को लेकर उत्कट विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। परिणाम स्वरूप कुछ संस्थागत खतों किताबत मेरे पास है, पर उसे मैं फिलहाल विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। हिंदी के प्रतिष्ठानी साहित्यिक स्वयंसेवकों ने भी कुछ बौद्धिक दंगा फसाद करवाना चाहा, पर व्यापक पाठक वर्ग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक अपुष्ट समाचार मिला कि जोधपुर में इस उपन्यास की एक प्रति को विरोध स्वरूप जलाया गया। एक प्रति के कारण आग दर्शनीय नहीं बनी तो जो भी किताबें कागज हाथ लगे उन्हें झोंक कर आग को प्रचंड बनाया गया। बहरहाल मेरा प्राप्य यही है कि मेरे रचनाकार के मन में जो बेचैनी पड़ रही थी, दिमाग पर जो दस्तकें लगातार पड़ रही थीं और जिरह जारी थी, उसमें अब देश के हर कोने का पाठक मेरा सहभागी और सहयात्री है। यही मेरा भरपूर प्राप्य है। इसने मेरी रचनात्मक उम्र को बढ़ाया है। वामधर्मी होने की मेरी आस्था को भारतीयता के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया है। इससे अधिक और मैं क्या चाह सकता हूं, सिवाय इसके कि रचना मुझे रचना के प्रति प्रतिश्रुत बनाए रखे और इसके आगे की दास्तान को लिखने की ताकत देती रहे। लेखक पाठक का ये जरूरी और कारगर रिश्ता कायम रहे। विनम्र भाव से पाठकों को फिर प्रणाम करते हुए, कमलेश्वर, 5/116 इरोज गार्डन, सूरज कुंड रोड, नई दिल्ली 110044।
पृष्ठ 2।